नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। डिजिटल इंडिया, भू अभिलेख व भू प्रशासन चुनौतियों पर आज से मनाली में राष्ट्रीय कार्यशाला का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे शिरकत। भाजपा विधायक दल की बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर बनाई गई रणनीति, भाजपा का आरोप, पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार और चुनाव आयोग में टकराव। राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ओपीएस देने के लिए लागू किया नया फार्मूला। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में पद यात्राओं का दौर जारी। और प्राकृतिक खेती से सुरक्षित खाद्यान्न और पर्यावरण संरक्षण को मिल रहा बढ़ावा, किसानों की बढ़ रही आय। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग और हिमाचल प्रदेश सरकार के भू अभिलेख निदेशालय के सहयोग से आज से मनाली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में डिजिटल इंडिया, भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा होगी। इसमें 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव, राजस्व सचिव, भू अभिलेख निदेशक और निपटान आयुक्त सहित अधिकारी शामिल होंगे। वे भू प्रशासन संबंधी चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे और इस क्षेत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक कल शाम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में बिहार चुनाव में एनडीए को मिली जीत पर एक बधाई प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा बैठक में विधानसभा का शीतकालीन सत्र में प्रदेश सरकार को अलग अलग विषयों पर घेरने की योजना बनाई गई। बैठक की जानकारी देते हुए विधायक दल के जीव रणधीर शर्मा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को जिस प्रकार प्रदेश सरकार टालने का प्रयास कर रही है, उससे चुनाव आयोग और सरकार के बीच टकराव की स्थिति नजर आ रही है। रणधीर शर्मा ने इसे प्रदेश में संवैधानिक संकट बताया।
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जिस तरह से सरकार टालने का प्रयास कर रही है और चुनाव आयोग के साथ एक टकराव की स्थिति बन गई है, एक संवैधानिक संकट सा हिमाचल प्रदेश में पैदा हुआ है। इस मुद्दे को भी प्रमुखता के आधार पर विधानसभा सत्र के अंदर उठाया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और शिक्षा और स्वास्थ्य के गिरते स्तर को लेकर भी अलग अलग नियमों के तहत विधानसभा के अंदर चर्चा उठाई जाएगी।
प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देकर सुरक्षित खाद्यान्न पैदा करने तथा पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं। हमीरपुर से प्राकृतिक खेती पर पेश है एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री के अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नदौन की ग्राम पंचायत ग्वाल पत्थर में कई किसानों ने प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट कार्य किया है। इसी पंचायत के गांव जमनोटी के कमल किशोर ने आकाशवाणी के साथ बातचीत करते हुए बताया कि आज प्राकृतिक खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं।
मेरा नाम कमल किशोर है जी, मैं ग्वाल पत्थर पंचायत रहने वाला, ग्राम नाम जमनोटी है। मैं शुरू च काम किया था, मुझे दसिया लॉकडाउन पहली बार मुझे घर बीज बूझा चली है, जिस के बाद प्राकृतिक खेती करता चली है। विभाग की तरफ से सारी सहायता मिलती, जिसते इन्हें मुझे जीवामृत, गांजीवामृत, अग्नि अस्त्र वगैरह जो देसी स्प्रे है सब बनाना दस ही। प्राकृतिक खेती ले पे करना, बाकी छड़ी ताई रसायनिक खेती ये बंद करती। तो हम इस वेला खरी साले इनकम खरी करी करी लेंदे, इस वेला कोई 2.5-3 लाख के बीज भी साले का कमांदे नहीं है।
जमनोटी के साथ लगते गाँव की एक और प्रगतिशील किसान कुसुम लता तथा उनके पति मदन लाल ने भी लगभग 3 वर्ष पहले कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के अधिकारियों की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से प्राकृतिक खेती को अपनाया।
मेरा नाम कुसुम लता है, मैं गांव कुसड़ोवा लंजर की रहने वाली हूँ। हम जैविक खेती तैयार करते हैं, तो भिंडी, मटर, फ्रांस बीन इत्यादि, आजकल मूली, सलगम, पालक, गाजर और बंद गोभी, फूल गोभी, गठ गोभी और ब्रोकली, इसी से हम घर चला रहे हैं।
नदौन की ग्राम पंचायत ग्वाल पत्थर में कई किसानों ने प्राकृतिक खेती में कई तरह की सब्जियां पैदा करके एक सीजन में 2.5-3 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
राज्य सरकार ने प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए नया फार्मूला लागू कर दिया है। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने 1:5 का विशेष फार्मूला अपनाने के निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पात्र कर्मचारियों को 60 दिनों के भीतर ओपीएस विकल्प चुनना होगा और सरकार के योगदान और लाभांश को जमा करवाने के साथ ही पेंशन के लिए आवेदन करना होगा। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों दैनिक वेतन आधार पर लंबे समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए पेंशन पाने का रास्ता साफ हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर इस वर्ष देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल में भी विभिन्न क्षेत्रों में पद यात्राएं निकाली जा रही है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा माई भारत के सहयोग से कल शिमला में एकता मार्च का आयोजन किया गया। सांसद सुरेश कश्यप के नेतृत्व में इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं, एनसीसी और एनएसएस कैडेट के अलावा स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना और एकता की भावना को मजबूत करना है।
इस प्रकार की पद यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। इन यात्राओं के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का संदेश, जिन्होंने इस देश को एक स्वरूप देने के लिए देश की 565 रियासतें, जिसमें 562 रियासतों का जो है विचार विमर्श के बाद और 2 रियासतों को बाद में उनका एकीकरण करके इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, उनको याद करते हुए और जिस प्रकार से उन्होंने देश को संगठित किया, आने वाले समय में हमारा देश इसी प्रकार से संगठित होकर आगे बढ़े।
इसी कड़ी में आज सोलन विधानसभा क्षेत्र के चंबाघाट, कसौली विधानसभा क्षेत्र के कुमारहट्टी और सराहा में एकता पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश भर में लगातार मौसम साफ बना हुआ है। आंकड़ों के अनुसार नवंबर माह में अब तक 90% सामान्य से कम वर्षा दर्ज हुई है, जिससे प्रदेश में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। बारिश न होने के बावजूद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते 24 घंटों में राज्य के 24 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। इस बीच अत्यधिक ठंड और सड़क पर पानी जमने के कारण रोहतांग दर्रा आज से पर्यटकों के लिए आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार ग्रामफू से रोहतांग और जिंगजिंगबार से सरचू तक वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं है। देश विदेश के पर्यटकों को रोहतांग दर्रे का दीदार करने के लिए अब अगले 6 महीने का इंतजार करना होगा। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में लागू डिजास्टर एक्ट के कारण नहीं कर पाए निर्देशों का पालन, पंचायती राज चुनाव में उपायुक्तों ने दिया जवाब। दैनिक जागरण का शीर्षक है, पंचायत सीमा बदलाव रोकने पर विवाद, सरकार ने निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र। दैनिक भास्कर की एक खबर है, हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे पर 10,000 का जुर्माना लगाया, अदालत में नेशनल हाईवे की सही तस्वीर नहीं की पेश। मौसम पर दिव्य हिमाचल की खबर है, 24 स्थानों पर न्यूनतम पारा 10 डिग्री से कम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डिजिटल इंडिया भू अभिलेख व भू प्रशासन चुनौतियों पर आज से मनाली में राष्ट्रीय कार्यशाला का होगा आयोजन, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे शिरकत। भाजपा विधायक दल की बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर बनाई गई रणनीति, भाजपा का आरोप, पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार और चुनाव आयोग में टकराव। राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ओपीएस देने के लिए लागू किया नया फार्मूला। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में पद यात्राओं का दौर जारी और प्राकृतिक खेती से सुरक्षित खाद्यान्न और पर्यावरण संरक्षण को मिल रहा बढ़ावा, किसानों की बढ़ रही आय। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।